नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डेविड स्पीगल हॉल्टर की द आर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हाउ टू लर्न फ्रॉम डेटा एक लोकप्रिय विज्ञान और सांख्यिकीय साक्षरता की पुस्तक है। इसका उद्देश्य पाठक को केवल सूत्र, ग्राफ या गणना सिखाना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि आंकड़ों से विश्वसनीय ज्ञान कैसे निकाला जाता है। पुस्तक ऐसे समय में लिखी गई है जब समाचार, चिकित्सा, कारोबार, सरकार और डिजिटल मंच लगातार संख्यात्मक दावे प्रस्तुत करते हैं। स्पीगल हॉल्टर बताते हैं कि किसी संख्या को उसके संदर्भ, अनिश्चितता और डेटा जुटाने की प्रक्रिया से अलग करके नहीं समझा जा सकता। वे टाइटैनिक यात्रियों, स्वास्थ्य जांच, अस्पतालों और हैरोल्ड शिपमैन जैसे वास्तविक मामलों के माध्यम से कठिन अवधारणाओं को व्यावहारिक बनाते हैं। पुस्तक का केंद्रीय ढांचा PPDSE है, अर्थात समस्या, योजना, डेटा, विश्लेषण और निष्कर्ष। यह ढांचा दिखाता है कि अच्छी सांख्यिकी विश्लेषण से बहुत पहले सही प्रश्न पूछने से शुरू होती है। इसलिए यह गणित की पाठ्य पुस्तक कम और डेटा आधारित दावों को जिम्मेदारी से परखने की मार्गदर्शिका अधिक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले PPDSE ढांचा, आंकड़ों से पहले सही समस्या तय करने की विधि। पुस्तक का सबसे उपयोगी विचार PPDSE ढांचा है, जिसमें समस्या, योजना, डेटा, विश्लेषण और निष्कर्ष के 5 चरण आते हैं। स्पीगल हॉल्टर का तर्क है कि सांख्यिकी का काम किसी तैयार तालिका पर गणना चलाना भर नहीं है। पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तविक प्रश्न क्या है। उदाहरण के लिए, किसी अस्पताल का मृत्यु दर अधिक दिखना अपने आप खराब इलाज का प्रमाण नहीं है, क्योंकि वहां अधिक गंभीर रोगी आते हो सकते हैं। समस्या की परिभाषा तय करती है कि किन लोगों की तुलना होगी, किस परिणाम को महत्वपूर्ण माना जाएगा और कौन से कारक भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसके बाद योजना बनाई जाती है, जिसमें नमूना, तुलना समूह, मापने की विधि और संभावित पक्षपात पर विचार होता है। तभी उपयुक्त डेटा इकट्ठा और विश्लेषित किया जा सकता है। अंतिम चरण में निष्कर्ष को मूल प्रश्न और उसकी सीमाओं के अनुरूप रखना आवश्यक है। यह ढांचा पाठक को चमकदार चार्ट या निर्णायक लगने वाली सुर्खियों से आगे देखने की आदत देता है। साथ ही यह बताता है कि गलत निष्कर्ष का कारण जटिल गणित नहीं, अक्सर खराब ढंग से पूछा गया प्रश्न या कमजोर डेटा योजना होती है। दूसरा, अनिश्चितता को कमजोरी नहीं, ईमानदार निष्कर्ष की अनिवार्य शर्त मानना। स्पीगल हॉल्टर सांख्यिकी अनिश्चितता को पुस्तक के नैतिक और व्यावहारिक केंद्र में रखते हैं। किसी अध्ययन का निष्कर्ष एक निश्चित सत्य की घोषणा नहीं होता, बल्कि उपलब्ध प्रमाण के आधार पर एक सीमित अनुमान होता है। नमूने का आकार, माप की त्रुटियां, चयन में पक्षपात और स्वाभाविक संयोग सभी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किसी प्रतिशत, औसत या जोखिम को देखते समय यह पूछना जरूरी है कि वह कितना स्थिर है और किन परिस्थितियों में बदल सकता है। पुस्तक विशेष रूप से इस प्रवृत्ति के विरुद्ध सावधान करती है कि छोटे अंतर को तुरंत वास्तविक प्रभाव मान लिया जाए। चिकित्सा जांच या उपचार के संदर्भ में यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लाभ के साथ गलत सकारात्मक नतीजे, अनावश्यक चिंता और हस्तक्षेप के नुकसान भी हो सकते हैं। लेखक अनिश्चितता को अस्पष्ट भाषा से छिपाने के बजाय उसे साफ ढंग से संप्रेषित करने पर बल देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि निर्णय टाल दिया जाए, बल्कि बेहतर निर्णय वही है जो प्रमाण की ताकत और उसकी सीमा दोनों को समझकर लिया जाए। पाठक के लिए सीख यह है कि सावधानी से व्यक्त किया गया निष्कर्ष अक्सर अधिक विश्वसनीय होता है, भले ही वह पूर्ण निश्चितता का वादा न करे। तीसरा, जोखिम की भाषा में सापेक्ष आंकड़ों के बजाय वास्तविक परिमाण देखना। पुस्तक रोजमर्रा के सांख्यिकीय दावों को समझने के लिए जोखिम प्रस्तुत करने के तरीके पर ध्यान दिलाती है। समाचारों में किसी जोखिम के दोगुना होने जैसी बात प्रभावशाली लगती है, लेकिन उसका अर्थ तभी समझ आता है जब मूल जोखिम भी बताया जाए। यदि कोई बहुत दुर्लभ घटना 2 लोगों के बजाय 4 लोगों में हो, तो सापेक्ष वृद्धि बड़ी है, पर वास्तविक अंतर छोटा हो सकता है। इसके उलट, सामान्य घटना में छोटा प्रतिशत परिवर्तन भी बहुत लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए स्पीगल हॉल्टर केवल आकर्षक प्रतिशत नहीं, वास्तविक संख्या, तुलना का आधार और समयावधि देखने की आदत विकसित करते हैं। औसत भी इसी तरह संदर्भ के बिना भ्रामक हो सकता है। असमान वितरण में कुछ अत्यधिक बड़े या छोटे मान औसत को खींच सकते हैं, जबकि मध्य मान या पूरे फैलाव से अधिक उपयोगी तस्वीर मिलती है। स्वास्थ्य संबंधी दावों में स्क्रीनिंग के लाभ को केवल जीवन बचने की संभावना से नहीं आंका जा सकता। यह भी देखना पड़ता है कि कितने लोगों की जांच हुई, कितनों को गलत चेतावनी मिली और कितनों को ऐसा उपचार मिला जिसकी जरूरत नहीं थी। यह दृष्टि आंकड़ों को डराने, बेचने या मनाने के साधन के बजाय संतुलित निर्णय का आधार बनाती है। चौथा, कारण और सहसंबंध के बीच अंतर। निष्पक्ष तुलना की कठिनाई। स्पीगल हॉल्टर समझाते हैं कि दो चीजों का साथ बदलना यह सिद्ध नहीं करता कि एक दूसरी का कारण है। सहसंबंध उपयोगी संकेत दे सकता है, पर उसके पीछे तीसरा कारक उल्टा संबंध या केवल संयोग हो सकता है। अस्पतालों की कार्यक्षमता जैसे प्रश्नों में मरीजों की उम्र, बीमारी की गंभीरता और इलाज तक पहुंच जैसे अंतर परिणामों को बदल सकते हैं। यदि इन कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया तो साधारण तुलना अनुचित निष्कर्ष दे सकती है। पुस्तक इसीलिए नियंत्रण समूहों, प्रतिनिधि नमूनों और निष्पक्ष अध्ययन डिजाइन के महत्व पर जोर देती है, जहां संभव हो। यादृच्छिक नियंत्रित अध्ययन कारणात्मक प्रश्नों के लिए मजबूत प्रमाण दे सकते हैं, क्योंकि वे तुलना समूहों के बीच व्यवस्थित अंतर घटाने का प्रयास करते हैं। फिर भी हर वास्तविक प्रश्न को प्रयोगशाला जैसे प्रयोग में नहीं बदला जा सकता, तब पर्यवेक्षणीय डेटा के साथ अधिक विनम्रता और सावधानी की जरूरत होती है। लेखक का उद्देश्य पाठक को हर संबंध को खारिज करना नहीं, बल्कि प्रमाण की गुणवत्ता के अनुसार भरोसा करना सिखाना है। यह अंतर्नीति चिकित्सा और सार्वजनिक बहस में निर्णायक है, क्योंकि गलत कारणात्मक दावे संसाधनों और लोगों के व्यवहार दोनों को गलत दिशा दे सकते हैं। अंत में मीडिया दावों की जांच, स्रोत, नमूने और सारांश पर 10 प्रश्नों की दृष्टि। द आर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का सार्वजनिक उपयोगिता वाला पक्ष मीडिया और संस्थाओं के संख्यात्मक दावों को परखने में है। स्पीगल हॉल्टर पाठक को ऐसी जांच पड़ताल की आदत देते हैं जिसमें दावा सुनते ही उसके स्रोत और अध्ययन की गुणवत्ता पूछी जाए। क्या निष्कर्ष मूल शोध से आया है या केवल एक सनसनीखेज शीर्षक से? क्या नमूना उस आबादी का प्रतिनिधित्व करता है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है? क्या कोई उपयुक्त तुलना समूह था और क्या परिणाम में अनिश्चितता या संभावित पक्षपात बताया गया है? पुस्तक की अंत में दी गई प्रश्नावली इसी आलोचनात्मक दृष्टि को व्यवस्थित रूप देती है। खास तौर पर लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि संक्षिप्त सारांश मूल परिणाम को विकृत कर सकता है, सापेक्ष जोखिम बताकर वास्तविक जोखिम छिपाया जा सकता है, औसत बताकर असमानता दबाई जा सकती है, या एक अकेले अध्ययन को अंतिम प्रमाण की तरह पेश किया जा सकता है। स्रोत की विश्वसनीयता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया, प्रचार और हित संबंध चयनित तथ्यों को उभार सकते हैं। यह दृष्टि हर दावे को संदेह की नजर से देखने का आग्रह नहीं करती। इसका लक्ष्य प्रमाण, भाषा और संदर्भ को देखकर उचित स्तर का विश्वास तय करना है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो आंकड़ों से भरे सार्वजनिक संसार में अधिक सजग निर्णय लेना चाहते हैं। पत्रकार, नीति निर्माता, चिकित्सक, शिक्षक, कारोबारी पेशेवर और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इससे सीधे लाभ ले सकते हैं। फिर भी इसका दायरा विशेषज्ञों तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य जांच, चुनावी सर्वेक्षण, अपराध, शिक्षा, जोखिम और उपभोक्ता दावों पर विचार करने वाला कोई भी व्यक्ति इसकी पद्धति अपना सकता है। पाठक को उन्नत गणितीय प्रशिक्षण नहीं चाहिए, क्योंकि स्पीगल हॉल्टर का जोर गणना कराने से अधिक प्रश्नों की गुणवत्ता, तुलना की निष्पक्षता, अनिश्चितता और निष्कर्ष की जिम्मेदार भाषा पर है। यही इसकी व्यावहारिक शक्ति है। कई सांख्यिकी परिचय पुस्तकें सूत्रों, परीक्षणों और तकनीकी परिभाषाओं के क्रम से आगे बढ़ती है। द आर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसके बजाय सांख्यिकीय कार्य की पूरी प्रक्रिया को वास्तविक समस्याओं से जोड़ती है। टाइटैनिक, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के उदाहरण यह दिखाते हैं कि तकनीक का चुनाव प्रश्न और संदर्भ से निकलता है। पुस्तक डेटा को अपने आप बोलने वाली वस्तु नहीं मानती, बल्कि मानव निर्णयों से निर्मित प्रमाण मानती है। इसीलिए यह पाठक को आंकड़ों पर अंधविश्वास या पूर्ण अविश्वास दोनों से बचाती है। इसका स्थायी लाभ यह है कि पाठक दावों के पीछे छिपी योजना, सीमाएं और वास्तविक अर्थ देखना सीखता है। डेटा साक्षरता पर लिखी पुस्तकों में इसका अलग स्थान इसकी स्पष्टता, वास्तविक मामलों और जिम्मेदार व्याख्या पर निरंतर बल के कारण है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डेविड स्पीगल हॉल्टर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।